चंद्रिका जीव कांड लेक्चर नंबर 65। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो वैच्छायाणम्। नमो लोए सवसाहूणम्। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय निंदवर्णे चंदमकलंकम् गुणरयण भूषणुदयम् जीवस्य परूणम् मोक्षम्। आचार्य कल पंडित टोडलनाथ जी द्वारा लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यह हिंदी अनुवाद है। उसमें हम पृष्ठ संख्या 214 पर आ गए हैं। अभी तक हमने जीव समास के बारे में अवगाहना की बहुत विस्तार से चर्चा की है। अब यहाँ जो कुल के जो भेद है उनकी जो संख्या है उसको बताने जा रहे हैं। पहले हमने देखा था जो जीव समास है उसमें जो वर्गीकरण करते हैं अलग अलग अपेक्षाओं से उसमें वर्गीकरण करते हैं। जैसे देह की अवगाहना ये एक भेद हुआ। ऐसे ही अन्य अन्य हमने जो स्थान देखे थे भेद देखे थे कौन कौन से देखे थे याद है? किसकी अपेक्षा? हाँ, चार हमने देखे थे। कौन से चार है? 164 पृष्ठ निकालना। हाँ, स्थानों के द्वारा, यानी स्थानों के द्वारा भेद। जैसे एक स्थान उपयोग की अपेक्षा एक स्थान है, संसारी और मुक्त की अपेक्षा दो स्थान, इस तरह से उसको स्थान कहते। तो स्थानों द्वारा भेद किए थे। फिर योनि भेदों के द्वारा भेद किए थे। मूल में तो हमने जैसे सचित्त अचित्त शीत उष्ण और संवृत विवृत और सभी के मिश्र मूल तो 9 भेद देखे थे और फिर उसके 84 लाख योनि के भेद होते हैं ये बात देखी थी। देह की अवगाहना इसमें हमने बहुत विस्तार से चर्चा की अभी तक, तथा कुल भेदों के द्वारा। ये कुल भेदों की चर्चा अब करेंगे। कुलों के कितने भेद हैं उसकी बात अब बताएंगे। एक कुल क्या होता है हमें पता नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने के पहले 216 पृष्ठ निकालना, अंतिम पैराग्राफ, ये टीका में चौथी लाइन कहते, यहां कोई पूछेगा कि मिला कि कुल और जाति में क्या भेद है। तो कहते जाति है वह तो योनि है, वहां उपजने के स्थान रूप पुद्गल स्कंदों के भेदों का ग्रहण करना। योनि में क्या लेना है? जहां उपजता है वहां के जो पुद्गल स्कंद है उसके भेद, उसको तो योनि कहा था, बरोबर। और कुल है वह जिन पुद्गलों से शरीर निपजता है उनके भेद रूप है। उपजने के स्थान रूप पुद्गल स्कंद उसको योनि कहा, और जिन पुद्गलों से एक्चुअली शरीर उपजता है उसको कुल कहा। ये पुद्गलों के ही भेद बताए। जैसे शरीर रूप पुद्गल आदि आकार आदि भेदों द्वारा पंचेंद्र तीरियंच में हाथी घोड़ा इत्यादि भेद है, ये तो आकारों के भेद समझाए, दृष्टांत देने के लिए बताए। वैसे ये जो पुद्गल स्कंधों के ही भेद है जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति होती है, उन पुद्गल स्कंदों के भेद को यहाँ कुल कहा है। अब कौन से जीव समास के कितने कुल होते हैं वो बताएंगे यहाँ पर। ये कुल यानी हमारे कोई गोत्र कुल वो बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, समझ में आती है ना बात?
जाति मत कुल मत।
हाँ, अब यहाँ हम पढ़ेंगे 214 पृष्ठ पर 113 नंबर की गाथा के ऊपर जो हेडिंग है, अब उनकी कुल की संख्या का जो विशेष यानी जो संख्या है, विशिष्ट संख्या है, उसे चार गाथाओं द्वारा कहते हैं। ये कुलों की बात यहाँ बताएंगे। बावीस सत्तिन्निया सत्तय कुल कोडि सय सहसायम ने आपुड़विद गागणि वाउ कायाण परिसंखा द्वाविंशति सप्त त्रीणि च सप्त च कुल कोटि शत सहस्राणि गेया पृथ्वीद काग्नि वायुकायिका नाम परिसंख्या। इसका अर्थ देखते हैं, पृथ्वी कायिकों के कुल 22 लाख कोटि है। देखो पहली लाइन में लास्ट में क्या लिखा है, कुल कोटि शत सहस्राणि, शत और सहस्र कितने हुए, हाँ तो 22 लाख होते हैं। पहले लिखा है शब्द द्वाविंशति, पहली लाइन में तो केवल संख्या लिखी है और सबके लिए कॉमन शब्द लाख लिखा है। लाख के लिए क्या शब्द आया, 100,000। 100,000 का अर्थ क्या है, लाख, हाँ 1 लाख। तो शत ने 100 और सहस्र ने 1,000, तो शत सहस्राणी ने लाख, तो कितने कोटि शत सहस्राणी, 22 लाख नहीं 22 लाख कोटि, 22 लाख करोड़। तो ये 22 शब्द कहां से लिया, द्वाविंशति। तो पहले में तो केवल संख्या लिखेंगे और नीचे उसी अनुक्रम से नाम लिखेंगे, तो ऐसा समझना द्वाविंशति यानी 22 कोटि शत सहस्राणी यानी 22 लाख। उसके बाद सप्त यानी 7 लाख कोटि, बराबर। तीसरा शब्द त्रीणी यानी 3 लाख कोटि, फिर सप्त 7 लाख कोटि। अब ये चार जनों की बातें बताई, कितने कितने, 22 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ और फिर 7 लाख करोड़। ये किसके है, उसके नाम नीचे के लाइन में लिखे हैं। गेया यानी जानना चाहिए, किसके, पृथ्वी यानी पृथ्वी काई के। उदक, उदक यानी पानी यानी जल कायिक, अप कायिक। फिर अग्नि कायिक यानी तेजस कायिक और लास्ट में वायु कायिक। तो उसी संख्या से पहला नाम पृथ्वी लिया, उसको 22, दूसरा नाम अप कायिक है उसके लिए 7 लाख कोटि, फिर तीन किसके लिए, तेजस कायिक के लिए 3 लाख कोटि और वायु कायिक के लिए 7 लाख कोटि, बराबर। इतने अलग अलग भेद है, पुद्गलों के भेद है, केवल पुद्गल नहीं है, ये पुद्गलों की संख्या नहीं है, पुद्गलों के भेदों की संख्या है। इतने अलग अलग प्रकार के पुद्गलों से इनके शरीर बनते हैं। अन्य मतियों ने तो मान लिया कि 5 वो जो महाभूत होते हैं उससे सबसे ये शरीर बनते हैं। अब ये 5 महाभूत जिसको कहे उनके ही शरीर के पुद्गल इतने अलग अलग प्रकार से बनते हैं। एक प्रकार के भेद होगे उसमें तो इसके, हाँ अलग अलग प्रकार के पुद्गल होते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के भेद पाए जाएंगे पुद्गलों के जिनसे शरीर उपजता। स्कंद के ही पुद्गल यानी स्कंद ही समझना, जिन स्कंदों से इनके शरीर बनते हैं उनके भेद, और जो उपजने के स्थान है वहां पर जो पुद्गल का टाइप है, पुद्गल स्कंदों का, उसको तो योनि कहा था। जहां उपजते हैं उन पुद्गलों के भेदों को योनि कहा था, स्कंदों के। और जिन परमाणु एक्चुअली जो स्कंद शरीर रूप से परिणमित होते हैं उनके जो अलग अलग भेद है उनको क्या कहा, यहाँ कुल कहा। वैसे तो हम सामान्य से कहते आहार वर्गना से ये सब शरीर बनते हैं, तो उसमें भी कितने भेद होंगे ना स्कंदों में, ये बात बताना चाहते हैं।
यानी फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं गेंडा जो है और खरगोश है, तो तो दोनों के शरीर के परमाणु जो होंगे जुदे, वो तो एकदम उसके तो थिक मतलब ऐसे स्किन है और इसका तो मुलायम है, तो पुद्गल भी उस तरह के अलग
हाँ,
अलग।
अभी जलकाय को में 7 लाख कोटि लिए
हो ना, उसमें क्या बताएंगे
अभी अन्यत्र तो हम कुछ तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं, सोच सकते हैं। वायु का एक में कितने 7 लाख कोटि, केवल लाख नहीं लाख कोटि, पृथ्वी का एक में 22 लाख कोटि। हाँ, ये कुलों के भेद है। अभी वो तो हमारे सूक्ष्म ज्ञान में इतना तो नहीं, हम केवल उनकी संख्या याद रखेंगे और कुछ नहीं कर सकते।
वो भी याद रहे तो
ये अभी हमने इस पुस्तक में जीव कांड में 20 प्ररूपणा देख रहे हैं ना, तो 20 प्ररूपणा के साथ और 4 बातें बनाते हैं तो उसको 24 ठाना कहते हैं। ये 24 ठाना नाम से सर प्रसिद्ध है। जैसे एक एक जीव, हमने जो 20 प्ररूपणा टेबल देखे ना उसके अलग अलग, एक में दूसरा अप्लाई करना, ऐसे ये 24 ठाना भी होते हैं। तो उसमें और 4 बात के कौन सी बताई जाती, किसी भी कोई भी प्ररूपणा ले लो उसमें और 4 बातें बतानी, कौन सी होती है? एक आश्रय होता है, एक ध्यान का प्रकार होता है, एक कुल होता है,
जाति।
हाँ?
कुल और जाति,
जाति होती है। आश्रय यानी उस विशिष्ट, मान लेते अभी हम गुणस्थान की सी बात करते हैं, उस गुणस्थान में कितना आश्रय है, या हम एकेंद्रीय की बात करेंगे तो एकेंद्रीय में आश्रय कौन कौन से होते हैं वहां पर, तो उनका आश्रय के भेद यानी मिथ्यात्व के 5 प्रकार, अविरति के 12 प्रकार, उसको आश्रय के भेद कहेंगे। वो अपनी बात यहाँ नहीं है, आश्रय है, ध्यान है, कुल है और जाति है, ये 4 और मिक्स करेंगे तो उसको 24 ठाना कहते हैं। वो तो आकार जो है, यहाँ आपका प्रश्न है जो घोड़ा रूप अभी जो हमने पढ़ा लास्ट पैराग्राफ में, वो आकार आदि भेद बताए, आकार आदि भेदों के द्वारा उसमें परिणमित हुए। अभी उसमें कितने प्रकार के क्या क्या भेद हो गए उसके तो डिटेल्स नहीं लिखिए कुछ वहां, तो केवल एक दृष्टांत के तौर पर उन्होंने आकार के भेदों से जो कुछ भेद है उसको बताया। यहाँ उनमें कोई जो कोई भेद हो गए उनके टाइप ऑफ पुद्गल स्कंद जो उसमें सूक्ष्म हो गए या स्थूल हो गए या जो कुछ हो गए हैं वर्ण वगैरह के प्रकार हो गए, कितने भेद हो सकते हैं ना, क्योंकि पुद्गल स्कंदों के स्पर्श रस गंध वर्ण के कितनी पर्याय होगी। तो हम तो उसमें अपनी ओर से कुछ नहीं आए बताएंगे। हाँ, तो यहाँ तो केवल कुलों की संख्या बताई जाती है। अभी हम 114 नंबर की गाथा को पढ़ेंगे। अभी तक तो केवल 4 जनों के बताए, पृथ्वी काय के कितने देखे, 22 लाख करोड़। हाँ, फिर अग्नि अग्नि काय के 3 लाख करोड़, वायु काय के 7 लाख और अप काय के 7 लाख करोड़। हाँ, अब आगे जो अन्य जीव समाज से उसकी भी बात देखेंगे हम। कोडिसय सहसाइम सत्तठणवय अठवीसाइम बे इंद्रिय ते इंद्रिय चौविंद्रिय हरिदकायाणम कोटिशत सहस्राणी सप्ताष्ट नवचष्टाविंशति द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय हरितकायानाम। द्विंद्रियों के कुल 7 लाख कोटि है, सप्त लिखा है ना, कोटि शत सहस्राणी पहले ही बता चुके यानी लाख करोड़, इतने सप्त, फिर अष्ट, नव और अष्टाविंशति, यानी वो द्विंद्रियों के कुल 7 लाख कोटि है। त्रिंद्रियों के कुल 8 लाख कोटि है, द्विंद्रिय के बाद तीनद्रिय का नाम लिया। चतुरिंद्रिय के कुल 9 लाख कोटि है, ऊपर लिखा ना सप्त अष्ट नव, और बाद में किसका नाम लिखा है, किस किस हरित काय ने वनस्पति, तो वनस्पति कायकों के कुल 28 लाख कोटि है। ऊपर तो पृथ्वी काय के 22 लाख कोटि देखे थे, यहाँ वनस्पति कायकों के 28 लाख कोटि हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अद्धते रस बारस दशयम कुल कोडी सदस हसाइम जलचर पक्षी च उपय उर परिसप्पे सुणव होन्ति अर्धत्रयोदश द्वादश दशकम कुल कोटि शत सहस्राणि जलचर पक्षि चतुष्पद उरु परिसर्पेषु नव भवन्ति। अभी पंचेंद्रियों में भेद कर दिए उन्होंने। अभी तक तो हमने एक इंद्रिय के देखे पांच और द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय देखे। अब पंचेंद्रियों में बता रहे हैं, पंचेंद्रियों में जलचरों के कुल 12.5 लाख कोटि है। पंछियों के कुल 12 लाख कोटि है। चौपदों के कुल, चौपद यानी चार पाय वाले पशु, जलचर यानी जल में रहने वाले पंछी, उनका दूसरा नाम क्या है? नभचर या खचर भी कहते हैं उसको। चौपद यानी ये जो पशु है उनके कुल 10 लाख कोटि है। उरसर्प अर्थात सरीसृप आदि, सरीसृप यानी वो रेंगने वाले जो है, उनके कुल 9 लाख कोटि है। सांप सरीसृप है नी, जिसको कहने सरीसृप, हाँ ये सब उसमें आएंगे, जैसे जो लिझार्ड है उस टाइप के सभी। हाँ संगी असंगी दोनों हो गए, क्योंकि पंछियों में भी संगी असंगी होते हैं, जलचरों में भी संगी असंगी होते हैं, तो उसकी टोटल देखी उन्होंने। ये अर्ध तेरस का अर्थ उन्होंने 12.5 लाख कोटि किया, अर्ध त्रयोदश द्वादश यानी 12, दशक यानी 10 और सरीसृप में 9 लाख कोटि। ये पंचेंद्रियों के भेद किए, जलचर पंछी चतुष्पाद यानी चौपादी और जो रेंगने वाले जिसको कहते हैं उरसर्प कहते हैं। पूरा सर पे नहीं, वो तो छाती पेट के बल से ऐसे, हाँ वो पंचेंद्रियों में जो होते हैं ना, लिझर्ड है और कोई जो मगरमच्छ है उनके पैर, फिर भी वो तो रेंगते हैं। स्पेशली सर्प है, जो अन्य भी कोई प्राणी है उसके बाद। अभी 116 नंबर जल काय के, हाँ वही तो स्कंद, केवल परमाणु नहीं, जिन स्कंदों से जलकायकों की काया बनती है यानी उनके जो पानी रूप शरीर है, उनके ही भेद इतने प्रकार के हैं।
ये जलचरों की बात है
अभी नहीं, उनके प्रश्न जलकायक की बात चल, उन्होंने ऊपर की बात 7 लाख की पूछी, जलचर तो 12.5 लाख है। जलचर पानी में रहने वाले, आपका प्रश्न जलकायिक के बारे में था,
ऊपर जो देखा था
जो 7 लाख होते हैं ना उसकी बात है, नेचुरली ना पानी सेल्फ जीव है, वो जलकायिक है। और जलचर यानी क्या? पानी में रहने वाले मछली है, कछुए है, सर्प है, उसको क्या कहेंगे? जलचर है?
देखो हम देखते हैं ना अपने चौपाटी का पानी, और वहाँ आप कहीं सिंगापुर गए हो या अमेरिका गए हो, वहाँ का पानी उसमें अंतर है कि नहीं? वहाँ ब्लू है, कोई लाल पानी है, कोई काला पानी है, ऐसा भी अंतर है, तो वो भी हम समझेंगे परमाणु जुदे हैं।
हाँ अभी 116 नंबर देखेंगे। छपंचादि सदसहसाइम सुरनेरयण राणम जहां कमम होंति ने आनी षट पंचाधिक विंशति द्वादश कुल कोटि शत सहस्राणी सुर नैरैक नरानां यथा क्रमं भवन्ति गेयानि। षट पंचाधिक विंशति, देवों के कुल 26,00,000 कोटि है, नारकियों के कुल 25,00,000 कोटि है। ये कहां से लाया? षट पंचाधिक विंशति यानी षट अधिक विंशति, विंशति यानी 20, उसमें 6 अधिक यानी 26 हुए, और नारकी के लिए पंचाधिक विंशति यानी 20 में 5 अधिक यानी 25 हुए। तो देवों के कुल 26,00,000 कोटि है, नारकियों के कुल 25,00,000 कोटि है, मनुष्यों के कुल 12,00,000 कोटि है। ये मनुष्यों के शरीर के उपजाने वाले जो पुद्गल स्कंध है, वो स्कंधों के भेद बताए यहाँ। कुल यानी वो उनकी स्पीशीज या वो नहीं लेना, कुछ टाइप ऑफ पुद्गल स्कंध लेने उसमें, ये 12,00,000 कोटि है। ये सर्व कुल यथाक्रम से कहे हैं, वे भव्य जीवों द्वारा जानने योग्य है।
अगर आप नहीं मानते तो अभव्य समझ लेना।
ऐसा तो कुछ कहा नहीं, मगर वैसे हो गए वो अन्य अन्य जो यहाँ लिखा ना, जिन पुद्गलों से शरीर निपजता है उनके भेद रूप है, यानी अलग अलग शरीरों के अलग अलग टाइप ऑफ पुद्गल से उपजते होने चाहिए। अभी तक हमने क्या देखे थे, पहले स्टैंजा में तो पृथ्वी का एक के 22,00,000 करोड़, अब का एक के 7,00,000 करोड़,
अग्नि के तीन
लाख करोड़, और वायु का एक के 7,00,000 करोड़। दूसरे स्टैंजा में हमने द्विंद्रिय के 7,00,000 करोड़, त्रिंद्रिय के 8,00,000, चतुरिंद्रिय के 9,00,000 करोड़, और वनस्पति के 28,00,000 करोड़। अभी पंचेंद्रियों में जलचर को पहले लिया, 12,50,000 करोड़, उसके बाद पंछियों के 12,00,000 करोड़, और 12,00,000 करोड़ किसके?
मनुष्यों
के। चौपदों के 10,00,000 करोड़, और उर सर्प सरीसृप जो कहते हैं वो 9,00,000 करोड़। देवों के है 26,00,000 करोड़, और नारकियों के 25,00,000 करोड़, मनुष्यों के 12,00,000 करोड़।
अपने को 25 की बहुत याद आती है।
हाँ, आगे सर्व जीव समासों के कुलों के जोड़ को बताते, टोटल कुल कितने हैं, सभी जीवों की अपेक्षा से कितने कुल हैं। हाँ, तो ए आय कोड़ी कोड़ी सत्तानौदीय सद सहसाइम पन्नम कोड़ी सहसा संवंगीणम कुलाणम य एकाच कोटि कोटि सप्तनवतिश्च शत सहस्राणि पञ्चाशत् कोटि सहस्राणि सर्वांगिनां कुलानां च। सर्वांगिनां मेने सर्व अंगियों के, अंगी यानी शरीरधारी, शरीरधारी लोग यानी सब
अंगी यानी
अंगी यानी शरीर, अंगों के धारक। इस तरह कहे हुए जो पृथ्वी काय आदि मनुष्य पर्यंत, हमने पृथ्वी काय से शुरू किया था श्लोक में देखना, और लास्ट में मनुष्यों के देखे, सब प्राणी उनका कुलों का जोड़ 1,00,00,000 कोड़ी और 97,50,000 कोड़ी प्रमाण है। उनकी संख्या यहाँ लिखी है। ये 1,00,00,000 कोड़ी क्यों लिखा, तो देखो यहाँ 0 से लेकर आप काउंट करेंगे तो एक के ऊपर कितने डिजिट्स हैं?
एक के ऊपर क्या
है? 14 डिजिट है, इसलिए एक को 1,00,00,000 कहा, बरोबर। हाँ, और 97,50,000 97,50,000 और कोड़ी, क्योंकि उसके ऊपर 7 जीरो है इसलिए उसको एक साथ लिख दिया 97,50,000 कोड़ी। ये तो हमने पहले पढ़ा, फिर पढ़ते हैं। यहाँ कोई पूछेगा कुल और जाति में क्या भेद है, हमने शुरू करने से पहले इसको पढ़ा था, उसका समाधान जाति है वह तो योनि है। हमने देखा 84 लाख योनि के भेद होते हैं, वहाँ उपजने के स्थान रूप पुद्गल स्कंदों के भेदों का ग्रहण करना, ग्रहण करने ने जानना। योनि किसको कहना? उपजने के स्थान रूप पुद्गल स्कंदों के भेद, उसको कहना योनि। और कुल किसको कहना? कुल है वह जिन पुद्गलों से शरीर निपजता है उनके भेद रूप है, जिसके जिस स्थान में जीव उत्पन्न होता है वो स्थान के पुद्गल स्कंद अलग, और एक्चुअली जो पुद्गल स्कंद शरीर रूप से परिणमित होते हैं वो उस पुद्गल स्कंद अलग, तो उनके भेदों को कुल कहते हैं और जो स्थान रूप है हाँ उसको योनि कहेंगे। जैसे शरीर रूप पुद्गल आकार आदि भेदों द्वारा, आकार आदि भेदों से भेद करने हैं तो पंचेंद्रिय तिर्यंच में हाथी घोड़ा इत्यादि भेद है, इस तरह यथासंभव जानना। अभी यथासंभव इसलिए लिखा क्योंकि इसके तो भेद हम कह नहीं सकते ना, तो यथासंभव जो भेद है वो जान लेना के। इति आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमट सार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ, उसकी जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के अनुसार सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक भाषा टीका में जीव कांड में प्ररूपित जो 20 प्ररूपना उनमें से जीव समास प्ररूपना नामक दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ। उसमें हम और जोड़ सकते हैं उसके हिंदी अनुवाद का जैसे संस्कृत है वो जीव तत्व प्रदीपिका, सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका। अब ये आगे ऊपर जो लिखा है ना, ये गोमट सार का दूसरा नाम क्या है? गोमट सार ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है मिली भाई? अमोल आप बता सकते हैं? बोलो। जीवकांड हमने जो अभी पढ़ा उसी में से मैं पूछ रही हूँ। देखो पहली लाइन, इति आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत, ये सिद्धांत चक्रवर्ती क्यों कहा? चक्रवर्ती जो कितने खंडों को जीतता है मालूम है? 6 खंडों। तो इन्होंने भी षटखंडागम को पूरी तरह से जान लिया है तो इसलिए उनको सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं, क्योंकि षटखंडागम हमारा मूल आगम है और उसके ऊपर इन्होंने गोमरसार आदि ग्रंथों की रचना की है। विरचित ने उनके द्वारा रचना की है, विरचित ने उनके द्वारा रचित गोमरसार उसी का दूसरा नाम क्या है? द्वितीय नाम करते इसी का दूसरा नाम पंच संग्रह ग्रंथ। उसके बाद उस पर जो संस्कृत टीका लिखी थी उस संस्कृत टीका का नाम है जीव तत्व प्रदीपिका। ये तत्व प्रदीपिका भी आपने सुना होगा नाम, हाँ प्रवचन सार की टीका। उस टीका के अनुसार अभी टोडरमल जी ने इसका नाम क्या लिखा? सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक भाषा टीका में जीव कांड, उसमें भी जीव कांड की बात चल रही है अपनी। उन्होंने जीवकांड कर्मकांड लब्धिसार क्षपणासार सब लिखे हैं, सबका नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका है। पंच संग्रह क्योंकि जो षटखंडागम में से जो 5 खंड है उसके आधार से लिख, षटवा खंड तो महाबंध वाला ही है ना, उनमें से जीव समास प्ररूपणा नामक दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ। पहले अधिकार का नाम क्या था? गुणस्थान प्ररूपणा। यहाँ 20 प्ररूपणा चलेगी, उसमें से हमने पहले गुणस्थान प्ररूपणा देखी, दूसरी जीव समास प्ररूपणा। सभी 20 प्ररूपणाओं के नाम मालूम है आपको? तो होना चाहिए, आपने शिविर किया ना भाई, हा? हमारा नहीं छोड़ दो वहां भी किया ना किसको पता है
किदर, 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 किदर।
कुंदलगिरी ने कुंभोज में किया। हाँ देखो देखो, हमने जीव समास अभी जो जीव कांड है ना, उसमें 20 प्ररूपणाओं का ही वर्णन है इस पूरी पुस्तक में, और कुछ नहीं है। उसमें से पहले हमने गुणस्थान देखे, बाकी सभी जो 19 के 19 है उसको मिलकर नाम है मार्गणा स्थान। एक है गुणस्थान और सबको मिलकर मार्गणा स्थान कहते हैं। फिर भी उसमें 14 मार्गणा अलग है और अन्य 5 प्ररूपणा अलग है। वो कौन कौन सी है 5 प्ररूपणा? जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग। लास्ट आपको देखना है ना, इंडेक्स निकालना अनुक्रमणी का। विषय सूची जहां लिखा है मिला कि नहीं मिला? अच्छा 59 पेज निकालना, गुणपज्जाय वो सब उसमें लिखा है। हाँ वहां हमने देखे थे गुणस्थानों के अन्य नाम कौन से, ये कौन से। देखो 2 नंबर की जो गाथा है, गाथा में देखो, संस्कृत गाथा देखो। गुण जीवा, गुण है ने गुणस्थान, जीवा है ने जीव समास, पर्याप्त है ने पर्याप्तिया, प्राण, संज्ञा और मार्गणा। मार्गणा तो 14 होते हैं और लास्ट में उपयोग। ये क्रमशः ने क्रम से 20 प्ररूपणा है। तो अभी तक हमने गुणस्थान और जीव समास देखे, अब हम कहेंगे पहले अभी हम पर्याप्ति देखेंगे, फिर प्राण देखेंगे, संज्ञा देखेंगे और उसके बाद उपयोग तो लास्ट में देखेंगे। हाँ वो 14 मार्गणा क्रम से देखेंगे और लास्ट में जाके उपयोग देखेंगे, जो दर्शन उपयोग कितने, ज्ञान उपयोग कितने। तभी यहाँ हम तीसरा जो अधिकार है उसको प्रारंभ करेंगे। हमारा जो हिंदी का पृष्ठ है 217, वहाँ से शुरू करेंगे। देखो मंगलाचरण, ये पर्याप्ति प्ररूपणा है, तीसरा अधिकार का नाम पर्याप्ति प्ररूपणा। प्ररूपणा का अर्थ क्या देखा था, याद है? प्ररूपणा करना यानी क्या करना? हाँ कथन करना, निरूपण करना, विशेष व्याख्यान करना, उसको कहते प्ररूपणा। अब इसका मंगलाचरण,
संभव स्वामी नमो सदा घाति कर्म विनसाय पाय चतुष्टय जो भयो तीजो श्री जिनराय।
ये संभव नाथ जो है कितने नंबर के तीर्थंकर है? तीसरे। अरे यहाँ लिखा है ना तीजो जिनराय, और तीसरा अधिकार शुरू कर रहे हैं, तो तीसरे अधिकार में तीसरे भगवान को, तीर्थंकरों को यहाँ नमस्कार करके शुरू करते हैं।
दूसरे अधिकार में अजित,
हाँ दूसरे अधिकार में ही लिया था ना उनको, जीव समास में देखो अजितनाथ को नमस्कार करके हमने शुरू किया था, पेज 160 पर।
160
नमो अजित सुखकार लिखा था ना।
और गुणस्थान में,
गुणस्थान में तो वृषभ का नाम नहीं लिया था शायद। मंगलाचरण तो, और ऐसे उन्होंने गुणस्थान प्ररूपणा शुरू की थी डायरेक्ट। वहां तो गुणरत्न भूषण उदय वो बात की थी उन्होंने। तो यहाँ संभव स्वामी नमो सदा घाति कर्म विनसाय, संभवनाथ भगवान को नमस्कार किया है जिन्होंने घाती कर्मों का नाश किया। तो ये तीर्थंकर अवस्था में हम उनको नमस्कार करते याद कर रहे हैं। पाय चतुष्टय जो भयो, ये कौन सा चतुष्टय प्राप्त किया? पाय ने प्राप्त किया, पाकर चतुष्टय प्राप्त किया। घाती कर्मों का नाश करके उन्होंने चतुष्टय की यानी 4 बातों की प्राप्ति की। अमोल आपको याद है कि आपने बहुत बार सुना भी है उसको, जिसको हम कहते हैं अनंत चतुष। हाँ बहुत अच्छा। हाँ हाँ ज्ञान के साथ किसको लगाओगे? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके जो भयो तीजो श्री जी ने, जो तीसरे तीर्थंकर हुए हैं अपने, उनको यहाँ हमने याद किया, नमस्कार किया। अब यहाँ बारंबार है तो पर्याप्ति की प्ररूपणा, फिर प्रसंगवश जब कहते ना तो बारंबार जिसका यहाँ हमें संदर्भ आता है कहो, या उसका उपयोग रहता है, तो यहाँ बारंबार अलौकिक गणित बहुत बहुत सुंदर है और बहुत इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल समझ में आवे। ये उगाहना जैसे हमने अभी पचा लिए ना, अभी आगे का तो आसान है। यहाँ बारंबार अलौकिक गणित का प्रयोजन पाया जाता है। ये लौकिक गणित तो हमारे कोई जो है जिसको हम कहते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन, यानी जमा कर देना, योग करना यानी टोटल करना, माइनस करना, गुणाकार भागाकार, वो सब होते हैं, तो ये लौकिक गणित है। और यहाँ तो बात अलौकिक गणित की है। अलौकिक गणित की जो कोई टर्मिनोलॉजी है वो भी अलौकिक कुछ अलग होगी, उसको यहाँ बताएंगे। तो यहाँ बारंबार अलौकिक गणित का प्रयोजन पाया जाता है, क्योंकि वो अभी हमने देखा ना असंख्यात क्या होता है, अनंत क्या होता है। अभी तो अवगाहना के प्रकरण में नाम तो लिए, जघन्य असंख्यात क्या होता है, परिता संख्यात वगैरह नाम तो हमने भले याद किए रटे, परंतु उसका भाव भाषण नहीं होता तो यहाँ हमें पता चल जाएगा। इस कारण अलौकिक गणित कहते हैं। इनकी संदृष्टि, आगे संदृष्टि अधिकार में से जानना, यह हर एक के लिए जो संदृष्टि सिंबल, जैसे असंख्यात कैसे लिखना, असंख्यात ऐसे नहीं लिखेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म हम उसकी कोई चिन्ह से उसको सूचित करेंगे, उसको कहेंगे संदृष्टि। हर एक के लिए जो असंख्यात के लिए, अनंत के लिए, संख्यात के लिए, दो तीन तो संदृष्टि हम देखते हैं, तो संख्यात के लिए कैसे लिखा जाता है, हाँ ये नू जैसा दिखता है वो, इसको कहेंगे संख्या। ये असंख्यात के लिए ये साइन है, अंग्रेजी छोट ए लेटर, ये असंख्यात, ये असंख्यात की साइन है। अनंत के लिए अलग अलग साइंस आती है, ख भी लिखते हैं, कहीं दो बार ख लिखेंगे, कहीं तीन बार ख लिखेंगे, जैसे जीव, जीव कितने हैं तो ख लिखेंगे, पुद्गल कितने ख ख लिखेंगे, तीन काल के समय कितने ख ख ख लिखेंगे आदि। ये डिपेंड्स कि कहीं कहीं तो जीरो यानी नभ, नभ यानी आकाश, उसके लिए भी ऐसा भी लिखेंगे, तो अनंत के लिए भी अलग अलग संदृष्टि होगी।
वो तो हमें अभी पढ़ना नहीं है,
हाँ।
फिर भी थोड़ी सी बात ख्याल में आवे इसलिए बताएं।
और वो जानते ना तो बहुत आसान लगता है, और आसान हो जाते हैं, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन पढ़े उसके बदले चिन्ह हम सामने रखेंगे तो वो ज्यादा आसान हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है। क्योंकि हर बार हम पल्य का असंख्यातवा भाग इतना बड़ा कहने के बदले हम पल्य के लिए प लिखे और असंख्यातवा भाग ऐसा लिखेंगे, तो ये हो जाएगी पल्य के असंख्यातवे भाग की संदृष्टि, तो ये समझने में बहुत आसान होता है। ये दूसरी जो आपके पास वॉल्यूम है ना ब्लू रंग का, उसमें ये सारी संदृष्टियां लिखी है, आएगा ना, आइए क्यों नहीं आएगा, उसमें यही विषय फिर आएगा। अभी जो हमने जीव समाज देखा, अब वो संदृष्टियों के अधिकार आधार से हम जीव समाज को फिर दोबारा पढ़ेंगे। वहां तो केवल संख्याओं को लिख दिया उन्होंने संदृष्टियों में, तो ये सारा रिवीजन होने वाली वहां पर। अब पढ़ते आगे। मान दो प्रकार का है, एक क्रोधमान माया लोभ वाला मान नहीं है, हाँ यह मराठी में जो मान कहते हैं हमारा मान वो भी मान नहीं है। मान का अर्थ क्या, मान का और कोई अर्थ मालूम है, मान यानी माप, प्रमाण जिसको के, हाँ तो मान भी आता है मान भी आता है, मान का और एक अर्थ चाहिए मुझे मद और ये लघु तत्व स्फोट में आचार्य अमृत चंद्र ने बताया अर्थ, उन्होंने भगवान को माता कहा, क्यों, जो मान से युक्त है वो माता युक्त, यानी क्या, मान यानी ज्ञान, तो ज्ञान और ज्ञाता कहते हैं ना, तो इसे मान और माता कहा है उनको। ज्ञाता के अर्थ में माता कहा है, माता यानी वो जननी के अर्थ में नहीं, नहीं तो अन्य मति भी कहते तुम ही हो माता तुम ही पिता हो। तो मान का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ वो बाकी कोई अर्थ नहीं है। यहाँ मान का अर्थ है माप, माप मेजरमेंट मेजर। तो मान दो प्रकार का है, एक लौकिक मान एक अलौकिक मान। लौकिक मान में जो हम मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे कपड़ा लाना है तो कैसे लाते हो, लीटर में। और आपको कोई दूध लाना है तो लीटर में, अच्छा। और घर लेना है तो हर एक के अपने अपने अलग अलग है ना। वहां लौकिक मान छह प्रकार का है, मान उन्मान, अभी उसका हर एक का अर्थ बताएंगे कौन कौन से। मान उन्मान अवमान गणित मान प्रतिमान और तत्प्रतिमान, इस तरह छह प्रकार का जानना। वहां पाई माणी यानी पैसा आदि मान जानना, जो हम चलन रूप जो रुपए है डॉलर है जो कुछ है उसको क्या कहेंगे, मान। ताकड़ी का तौल,
पाई यानी समझे क्या,
पाई यानी पाई, पहले के जमाने तीन पाई का एक पैसा होता था, चार पैसे का एक आना होता था और सोलह आने का एक रुपया होता था, तो एक रुपए में कितने पैसे होते थे, 64 पोरी कहते हैं ना स्वामी जी, हाँ हाँ 64 पोरी तिखास, हाँ सोलह आने, ये पहले के जमाने के वो माप थे सब। पाई माणी आदि मान जानना, हाँ कोड़ी भी आते थे। अब ये तीन पाई की एक ये हो गई ना पैसा, और चार कोड़ी की एक पाई होती क्या, ऐसा कुछ था, हम तो स्कूल में सीखे थे वो। हाँ।
कौड़ी मोल से
तो कहते कौड़ी मोल होगी, नहीं वो नहीं, ये एक पैसा होता था। हाँ ताकड़ी का तौल, हाँ देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ जो लिखा है ताकड़ी यानी तराजू यानी वजन। जैसे हमने सब्जी लानी है तो कैसे लाएंगे, तराजू में तौल के लाएंगे, तो किलो से लाएंगे ना यहाँ, तो वहाँ किलो पाउंड आदि उसको क्या कहेंगे, उन्मान। पहले हमने देखा पैसे आदि जो है उसको मान कहा, और जो हम तोलते हैं वजन जिसको कहेंगे उसको उन्मान कहा। चले इत्यादि का प्रमाण, चले यानी जो प्रवाही पदार्थ है, ये दूध है पानी है तेल है, तो प्रवाही चीजों का माप लीटर औंस इत्यादि। अवमान जानना, ये जो ब्रैकेट में लिखा है तो मैंने अपने से लिखा है हो अपनी भाषा में, एक दो से लेकर गणित मान जानना, जो हम संख्याएं गिनते हैं 1 2 3 4 उसको क्या कहेंगे, गणित मान। चरिम तोला मासा, चरिम ऐसे बहुत छोटे जो माप है ना, चरिम तोला मासा जैसे ग्राम मिलीग्राम आदि प्रतिमान जानना। घोड़े का मूल्य इत्यादि तत्प्रतिमान जानना, जैसे इसके पास इतने घोड़े, पहले के जमाने में जब किसी की कितना रईस है बताते थे तो इसके पास इतने घोड़े हैं इतने गायें हैं, आज के जमाने में कहते उसके पास गाड़ी है तो कौन से मेक की है कितनी है ऐसा कहेंगे, उसके पास 10 मर्सिडीज है। हाँ, अरे हाँ है ना, हमारे वो डॉक्टर महावीर शाह है ना अपने अमेरिका के, कहते उसको चालू रखने के लिए रोज एक यूज करनी पड़ती, कहते हमने इतना सब कमाया कुछ सब 35-40 साल हमने वेस्ट किए, क्यों, हमें ये तो आत्मा का कुछ पता ही नहीं ज्ञान, अभी अभी तो इतने रुचिवान हो गए, रोज 5-5-6-6 घंटे ऐसे हमने बैठ कर प्रवचन सुनते हैं, अपने जितनी आद्योपांत सभी सीडी ऑडियो जो कुछ है वीडियो अभी आज तक की वो सभी उनके पास है और सब सुनते, केवल स्टोर नहीं किए उन्होंने, बहुत रुचि वाले।
धवला की भी है और वो सुनते हैं,
हाँ धवला जय धवला सब है उनके पास,
धवला
पुस्तकें भी है और सीडी भी है।
हाँ पुस्तकें भेजी हमने उनके लिए,
ये हमने अभी लौकिक मान देखा, अब अलौकिक मान। ये लौकिक मान से तो ठीक है हम व्यवहार में जो उसके युद्ध करते उसके जस्ट यहाँ मेंशन किया, उन्होंने बता दिया क्या क्या होते हैं। हमारा प्रयोजन यहाँ अलौकिक मान से है। तो अलौकिक मान के चार भेद हैं: द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान और भावमान। द्रव्यमान यानी द्रव्य का माप जो है उसको द्रव्यमान कहेंगे, या संख्या भी उसको भी द्रव्यमान कहेंगे। वहां द्रव्यमान में जघन्य द्रव्यमान एक परमाणु, छोटे में छोटा कौन है, एक परमाणु, और उत्कृष्ट द्रव्यमान सभी पदार्थों का प्रमाण, प्रमाण की बात है। द्रव्य में संख्या को लिया जाता है, जैसे आप आगे चलकर जो धवला में भी है ना, द्रव्य प्रमाणानुगम में क्या कहते हैं हम, संख्या कहते हैं। तो यहां भी एक परमाणु, वो एक संख्या हुई, वो जघन्य द्रव्यमान हुआ। और उत्कृष्ट द्रव्यमान कितना होगा, सभी द्रव्यों का प्रमाण, सभी द्रव्य मिलकर प्रमाण कितना होता है, हाँ प्रमाण भी संख्या कितनी है? अरे हाँ ना भाई, इतना टाइम क्यों सभी द्रव्यों का प्रमाण कितना हुआ, अरे जीव ही अनंत है और पुद्गल अनंत अनंत है। फिर धर्म धर्म आकाश, हमने प्रदेश थोड़े पूछा, हमें संख्या पूछी है, एक एक। और काल असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात, भूल गए ना, क्योंकि वो तो मामूली चीज है। हाँ नहीं भूले, अच्छा ये सारे आने वाली बात हमें लगता है सिद्धांत प्रवेशिका, आगे जाके सम्यक तो मार्गणा में सब सीखने वाले हम इसी पुस्तक में। अलौकिक मान के चार भेद है: द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान, भावमान। वहां द्रव्यमान में जघन्य द्रव्यमान एक परमाणु, और उत्कृष्ट द्रव्यमान सभी पदार्थों का प्रमाण, प्रमाण यानी संख्या। क्षेत्रमान में जघन्य क्षेत्रमान एक प्रदेश, क्षेत्र को बताने वाला माप एक प्रदेश, और उत्कृष्ट क्षेत्रमान संपूर्ण आकाश, कौन सा, लोकाकाश के अलोकाकाश, एक आकाश, आकाश द्रव्य पूरा, दोनों मिलकर वही तो आकाश द्रव्य कह दी ना, उसमें कोई भेद नहीं है, भेद तो हमने पाड़े, तो संपूर्ण आकाश कह दिया। संपूर्ण आकाश यानी सभी उसको, श्रेणी रूप नहीं, पूरा घन आकाश। कालमान में देखो, द्रव्यमान देखा हमने, क्षेत्रमान देखा, अभी कालमान में काल का माप, जघन्य कालमान कितना, एक समय, और उत्कृष्ट कालमान तीनों कालों के समय, भूत भविष्य और वर्तमान, तीन कालों के, काल के समयों का समूह। ख्याल में आती है बात ये अमोल, पता चल रहा है क्या कह रहे हैं? भावमान, अभी भाव में तो क्या लेना है, भावों की बात है, उसमें जघन्य भावमान, सूक्ष्म निगोदिया लब्धिय पर्याप्त का लब्धि अक्षर ज्ञान, लब्धि अक्षर ज्ञान यानी पर्याय ज्ञान, ज्ञान भावमान में ज्ञान की बात ली है, जो मिनिमम पॉसिबल ज्ञान और मैक्सिमम पॉसिबल ज्ञान। तो जघन्य भाव क्या है, तो सूक्ष्म लब्धिया पर्याप्त जीव का जो जघन्य ज्ञान है उसका नाम क्या है, पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान को ही दूसरा नाम क्या है, लब्धि अक्षर, लब्धि अक्षर, लब्धि अक्षर। और उत्कृष्ट भावमान केवल ज्ञान है। अभी जो हमने द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान और भावमान देखे, उसके द्रव्यमान के दो भेद है। द्रव्यमान का अर्थ होता है वे संख्याएं, प्रमाण, प्रमाण का अर्थ है संख्या, कितने हैं उसको कहेंगे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के दो भेद है, एक संख्यामान और एक उपमामान। कौन से दो भेद है, संख्यामान यानी संख्या में जो कहेंगे उसको संख्यामान कहेंगे, और उपमा देकर जो संख्याएं समझाई जाती है तो संख्या ही, हमें प्रमाण ही बताना है, परंतु किसी उपमा, किसी की उपमा देकर समझाया जाता है। जैसे हम कहते हैं सागर, पल्य, ये क्या है, उपमा दिया ना, अंगुल, ये नाम कैसे दिए हैं, उसकी उपमा देकर समझाया है। अब उस उपमा का क्या प्रमाण है, उसमें कैसे कैसे उसको काउंट करना, ये सब बातें आने वाली हैं। अभी हमने द्रव्यमान के दो भेद देखे सुशीला बेन, संख्यामान और उपमा मान। ये जो द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान, भावमान, ये किसके भेद है? अलौकिक मान के। बहुत अच्छा। लौकिक मान के तो वो तो मान उन्मान वो सब उसमें अवमान वगैरह, प्रतिमान तत्प्रतिमान। वहां भी संख्या, हम संख्या गिन रहे हैं ना, वहां पर उपमा के द्वारा हम संख्या को गिनते हैं, द्रव्य की बात नहीं है। द्रव्यमान का ही अर्थ होता है प्रमाण, संख्या। अभी हमने क्या देखा, दवला में जो द्रव्य प्रमाणानुगम कहते हैं, तो वहां द्रव्य द्रव्य प्रमाण ने कभी कहीं जीवों की संख्या बताएंगे, पुद्गलों की संख्या बताएंगे, जो विषय है उसकी संख्या बताएंगे, जो काल का विषय होगा तो काल के समयों की संख्या बताएंगे। जैसे हम क्षेत्र के द्वारा भी हम प्रमाण बता सकते हैं। ख्याल में आई बात? हाँ, वो तो बात आएगी, अभी हम तो क्रम से जाएंगे आगे। संख्यामान को बता रहे हैं, वहां संख्यामान के तीन भेद है। ये जो संख्याएं हैं सभी, एक से लेकर केवल ज्ञान तक की, उसके तीन भेद है। एक तो है संख्यात, असंख्यात और अनंत। वहां संख्यात तीन प्रकार का है। संख्यात यानी जो न्यूमरेबल, असंख्यात यानी इन्यूमरेबल, और अनंत यानी इन्फिनिट। परंतु जब इन्फिनिट कहते हैं तो उसके कोई भेद नहीं होते। जो लौकिक में जो हम पढ़ते हैं इन्फिनिट, इन्फिनिट कहेंगे तो उसके कोई भेद नहीं, परंतु यहाँ इन्फिनिट के इन्फिनिट भेद है हमारे पास, जो भगवान ने बताए हैं और उनके ज्ञान का विषय भी है। क्योंकि हम कहते ना, जीव वाला जो अनंत है और पुद्गल भी अनंत है, तो उस अनंत से वो अनंत अनंत गुणा है, ये कब कह सकते हैं? तो अनंत के भेद हो गए तो ही हो सकता है ये बात। जिसको इसका अभ्यास नहीं है उनको वो तो बराबर ख्याल में नहीं आती, उनके बहुत कन्फ्यूजन चलते। तो जब आप अनंत कहते तो उसमें भेद कैसे होते? जिसको एंड ही नहीं है तो इसमें आप इससे ये अनंत बड़ा ये कैसे कह सकते हैं? जब हम इसको पढ़ेंगे तो वो बात ख्याल में आएगी। भाव मान में लिया हमने, द्रव्यमान में सभी पदार्थों का प्रमाण वो उत्कृष्ट द्रव्यमान लिया, वहां द्रव्यों की संख्या लेनी थी। अब यहां हम इस संख्याओं में उत्कृष्ट संख्या देख रहे हैं। द्रव्यमान के संख्यामान वाले जो भेद है, अभी संख्याओं की अपेक्षा हम गिन रहे हैं, वहां द्रव्यों का प्रमाण बताना था, अब यहां संख्याओं की बात है। जब संख्या कहेंगे तो उसमें सभी मान आ जाएंगे। तो संख्या मान के तीन भेद है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। कौन से? संख्यात, असंख्यात, अनंत। वहां संख्यात तीन प्रकार का है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य संख्यात कौन सा है अश्विन भाई? दो। एक को गुणा करे, उसका वर्ग करे, उतना ही रहता है, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिया है। सभी संख्याओं की जब बात करेंगे, धाराओं की, तब उसको एक को गिनेंगे, अभी नहीं गिनेंगे उसमें। तो संख्यात के तीन भेद कौन से हैं सुशीला बेन? हाँ, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जघन्य कोई एक संख्या होगी, उत्कृष्ट वाली भी कोई अन्य संख्या होगी, बीच वाले जो मध्यम अनेक संख्याएं होगी, तो उनको क्या कहेंगे? मध्यम संख्यात। पुनश्च असंख्यात है। अभी संख्यात के तीन भेद किए, देखो। संख्यामान जो है उसके मूल में तीन भेद कौन से? संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात के तीन भेद, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। असंख्यात के तीन भेद आप पढ़ो वहां पर, परिता संख्यात लिखा है ना, युक्ता संख्यात यानी परिता संख्यात, युक्त असंख्यात, असंख्यात असंख्यात, तो उसको जोड़कर हम पढ़ते हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। ये कोई संख्यात के भेद नहीं, असंख्यात के है। हाँ, इन तीनों के, अभी हर एक में तीन तीन लगाओ, कौन से तीन? जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, बराबर। असंख्यात के टोटल भेद कितने हुए बेटा? नौ, क्योंकि पहले मूल भेद तीन किए, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात, और हर एक के तीन तीन, तो उसके नौ भेद हो गए। असंख्यात के नौ और संख्यात के तीन। अब अनंत के देखेंगे,
कौन से तीन देखें?
हाँ, अनंत है, उसके भी तीन भेद मूल में, परितानंत यानी परितानंत, परितानंत नाम तो वही लिखे थे जो असंख्यात के लिए हमने दिए थे, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। इन तीनों के जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद से नौ प्रकार का है, अनंत भी तीन त्रिक नौ। संख्या मान के टोटल भेद कितने हुए सरलाबेन? हाँ अमोल, संख्या मान के टोटल भेद कितने हुए? इसके तीन, इसके नौ, अनंत के नौ, 21 भेद हुए। ऐसे संख्या मान के 21 भेद हुए, उनमें से जघन्य संख्यात दो संख्या मात्र है, टू फिगर जो है, दो जो है, इसको क्या कहेंगे? जघन्य संख्यात। यहां एक का गुणकार भागहार करने पर कुछ वृद्धि हानि होती नहीं, एक संख्या को क्यों नहीं जघन्य संख्यात कहा? एक में से उसको कुछ गुणा करो, माइनस करो, भागाकर देखो, तो एक ही रहता है, यानी गुणा और भागा करने पर एक का एक रहता है, उसका घन करो, उसका वर्ग करो, फिर भी एक ही रहता है। इसलिए दो को ही संख्यात के भेद रूप से ग्रहण किया है, एक को नहीं। पुनश्च तीन आदि संख्याएं, दो को तो जघन्य संख्यात कहा, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, अभी सभी आगे की जो है उसको क्या कहेंगे? मध्यम संख्यात। कहाँ तक? तीन से लेकर, हाँ, तीन आदि संख्याएं मध्यम संख्यात के भेद है, इसलिए दो ही को जघन्य संख्यात कहते हैं। पुनश्च तीन से लेकर एक कम उत्कृष्ट संख्यात पर्यंत, उत्कृष्ट संख्यात वाली जो कोई विशिष्ट संख्या है उसमें से एक कम करो, उसको भी क्या कहेंगे? मध्यम संख्यात। मान लेते हैं हम अगर 100 को उत्कृष्ट कहेंगे तो 99 को हम मध्यम कहेंगे, तो दो भी मध्यम हुआ और 100 तो उत्कृष्ट हुआ, दो तो जघन्य हुआ और 100 तो उत्कृष्ट हुआ, तो तीन से लेकर 99 तक मध्यम हो जाएंगे इस तरह। अब उत्कृष्ट संख्यात किसको कहना, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसको पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परंतु उसको देखो सही, एक कम जघन्य परिता संख्यात को उत्कृष्ट संख्यात जानना। अब ये जो जघन्य परिता संख्यात क्या है वो कल देखेंगे। हाँ, तैयार होके खाना पीना खा के बराबर आना, बहुत इंटरेस्टिंग विषय। हाँ, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो।